ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत बनाने की दिशा में विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
भारतवर्ष में पंच परमेश्वर की अवधारणा काफी प्राचीन है। एक तो भारतवर्ष दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र और दूसरा समाज के पंचों के माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझाना हमारी संस्कृति में सम्मिलित रहा है। और आज भारतवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहा है। इस दिवस का ऐतिहासिक महत्व क्या है और भारतवर्ष में इसने किस तरह जमीनी परिस्थितियों में व्यापक बदलाव लाए हैं, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं राजनीतिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक जगदीश उपासने। जगदीश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि हम जो आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहे हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और इसने किस रूप से अपनी स्थापना के बाद से ग्रामीण शासन को मजबूत बनाया है।
हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर शासकीय निर्णय लेने की व्यवस्थाएं रही हैं, चाहे आप उपनातीत देख लें, गुप्त वंश देख लें, मौर्य साम्राज्य देख लें, उससे भी पहले गांव एक यूनिट रहे हैं और गांव के लोगों की सब जरूरतों को पूर्ण करने का केंद्र रहे हैं। फिर जो आक्रामक लोग आए, आक्रांता आए और उन्होंने देश में अपना राज्य कायम किया, तो ये व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अंग्रेजों के समय इसको अंग्रेजी ढांचे पर इस व्यवस्था को बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सारे मूल तत्व यही था कि अंग्रेजों का उसमें प्रधान रहे, अंग्रेजों के हाथ में सब सत्ता की चाबी रहे, सारा निर्णय अंग्रेज करें। 1992 में बड़ा संशोधन संविधान में 73वां संशोधन किया गया और इसको एक औपचारिक रूप दिया गया। पंचायती राज सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है भारत के लिए, हमने अपने अतीत से और इसको सीखा है, अतीत का अनुभव हमारे काम आया, पुस्तकों में, गजट में और इतिहासों में, जिलों के, इन सब बातें दर्ज है। तो 73वां संशोधन संविधान संशोधन 1992 में 24 अप्रैल के दिन ही इनैक्ट हुआ था, इसलिए इसको राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसमें पहली बार ये कल्पना की गई कि जो केंद्र सरकार सारे निर्णय लेती है और फिर ऊपर से वो नीचे तक पहुंचते हैं, तो उससे अच्छा है कि अनेक ऐसे निर्णय हैं जो गांवों के लिए होते हैं और दिल्ली में किए जाते हैं, तो वो निर्णय गांव के स्तर पर क्यों न किया जाए। तो एक आदर्श व्यवस्था तो यही थी जब पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित हुआ कि 3 स्तरीय एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी और फिर जिला पंचायत होगी, जिसमें सारा डिसीजन मेकिंग है गांव से संबंधित या उस वहां के लोगों से संबंधित, तो वो सारा निर्णय करने का काम ग्राम पंचायत करेगी, पंचायत समिति और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में अध्यक्ष की या मैनेजर की भूमिका में रहेगी। 73वां संविधान संशोधन होने के बाद भी पंचायतें लुंज पुंज बनी रही और उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी कि महिलाओं के लिए क्या आरक्षण होगा। जो पुराना आरक्षण है जो SC ST के लिए वो आरक्षण था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद OBC का भी आरक्षण रहा, लेकिन महिलाओं की कोई जगह नहीं थी, जबकि गाँव में महिलाएं और सब काम करने में आगे दिखती हैं। तो पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इसमें एक क्रांतिकारी बदलाव इस व्यवस्था में किया है और इसके कारण आज आप देखते हैं कि देश भर में सारी पंचायतें किस तरह से समृद्ध हुई। फिर डिजिटल इनिशिएटिव जो मोदी सरकार ने लिए हैं वो बहुत बड़ा उपाय है, जिसके कारण एक तो कनेक्टिविटी बढ़ी है गाँव के साथ में, तो इससे पारदर्शिता आई है और लोगों को जानकारी मिली है। फंड मैनेजमेंट में ऑनलाइन अरेंजमेंट किया गया है और उसके कारण पंचायतों को जो फंड दिया जाता है ग्राम विकास के लिए उसका ऑडिट होता है और लोग उसके बारे में जान सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो उस पर एक्शन होती है। जो वित्तीय अनुदान केंद्र देता था पंचायतों को बहुत कम देता था, जैसा कि आज केंद्रीय पंचायत राज मंत्री लल्लन सिंह जी ने बताया कि 13वें वित्त आयोग की से जो सिफारिश थी उससे 7 गुना अधिक अनुदान ग्राम पंचायतों को और मोदी सरकार के कार्यकाल में मिला है। फिर पंचायत लेवल पर जैसे आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भूमि विवाद सबसे बड़ा विवाद होता है जमीन को लेकर के, जमीन व्यक्ति की है, पंचायत की है, सार्वजनिक है, चारागाह लैंड है, तो उसका एक रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया है जिसके लिए एक स्वागत ऑनलाइन प्रोग्राम भी चलता है। इसके अलावा सारे लैंड रिकॉर्ड्स का पंचायत लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, अधिकतर पंचायतों में हो चुका है और बिहार में सबसे पहले नीतीश कुमार सरकार ने पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, देश भर में आज वो लागू हुआ और उससे एक बड़ा बदलाव हम गाँव में देखते हैं।
जगदीश जी, यहाँ पर हम प्रधानमंत्री को सुनना चाहेंगे। उन्होंने झंझारपुर के बिदेश्वर स्थान पर उन्होंने पंचायतों के अभिनव और अनुकरणीय कार्य के लिए कुछ पंचायती राज प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार, ओडिशा, केरल, तेलंगाना और असम के प्रतिनिधियों को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन दिया है और वो बड़ा ही प्रेरणादायी संबोधन है, वह श्रोताओं के साथ बांटना चाहेंगे।
बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में बने। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते।
इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभा को संबोधित किया।
हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके द्वारा बिजली वितरण, गैस प्लांट एवं अन्य योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 लाख लाभार्थियों को आवंटन पत्र दिए जा रहे हैं।
श्रोताओं, हम यहाँ आपको कुछ लाभार्थियों के अनुभव भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आइए जानते हैं उन्हें कैसा लग रहा है।
मेरा नाम सरिता देवी है, मेरा गांव मेहत है, पंचायत बल्ली मेहत है, जिला मधुबनी। फायदा तो है सर, जीविका से जब से हम लोग जुड़ाव किए हैं, हम लोगों को फायदा तो बहुत हुआ है इन सब से। गरीब दीदी को अपना नाम, अपना घर से निकलने का पहचान सब मिला है।
जगदीश जी, हमने चर्चा की कि पहले की तुलना में अब पारदर्शिता आई है। बेहतर दक्षता और पारदर्शिता के लिए पंचायत शासन में प्रौद्योगिकी किस रूप में भूमिका निभा रही है? प्रधानमंत्री ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने काफी काम किया है, थोड़ा इसे और स्पष्टता से श्रोताओं को जानकारी दें।
देखिए, टेक्नोलॉजी ने बहुत इंश्योर किया है कि सबसे पहले फंड का दुरुपयोग न हो। मैंने जैसे बताया कि 7 गुना अधिक पैसा पंचायतों को दिया जा रहा है, ये बड़ी राशि है और ये सीधे ग्राम पंचायतों को जाती है, ये जिला पंचायत या पंचायत समितियों को नहीं, ये सीधे ग्राम पंचायत को जाती है, सरपंच के हाथ में होती है। लेकिन उसका ऑडिट होता है, वो भी ऑनलाइन उपलब्ध है और गांव का हर व्यक्ति उसको मोबाइल फोन पर देख सकता है। और 2 लाख से ज्यादा पंचायतें इंटरनेट से जुड़ गई है, प्रधानमंत्री ने बताया। अभी फाइबर लाइन बिछाने का काम चल रहा है और लगभग सारी पंचायतें इस सरकार के मध्यकाल तक आते आते सारी पंचायतें इंटरनेट से जुड़ जाएंगी, फाइबर लाइन से जुड़ जाएंगी और आप 1 सेकंड में हर पंचायत का हाल अपनी जगह से जान सकेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है। टेक्नोलॉजी कितना बदलाव करती है, हमने UPI में देखा है। UPI का जो सिस्टम है इसको इसीलिए अपना रहा है कि वो फुल प्रूफ सिस्टम है, वैसी ही गड़बड़ी की संभावना समाप्त हुई है। और फिर प्रधानमंत्री आवास है, तो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, ठीक बन रहे हैं कि नहीं, उसका निश्चित स्वरूप दिया तय किया गया। CPWD ने उसका एक मानक बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया कि ये आवास ऐसे बनेंगे, तो आप उसको लाइव देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने ये सुविधा कराई है, आपके यहाँ गाँव में शौचालय बने हैं कि नहीं, आपके यहाँ टेप से घर में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, इसको लाइव देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जो गड़बड़ी की गुंजाइश न्यूनतम हो जाती है और इसीलिए गाँव में आप देख रहे हैं कि सड़कें बन रही है और छोटे स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, स्कूल चल रही है और जो सरपंच है, जो बड़े उद्यमी एंटरप्रेन्योर सरपंच बनी है, कई तो एमटेक में आज ही के अखबार में देख रहा था, छत्तीसगढ़ में भिलाई के पास दुर्पाटन ब्लॉक में एक पंचायत है मोहका खुर्द, वहाँ की जो सरपंच है अर्चना यादव, वो एमटेक, उन्होंने अपने गांव को एकदम काया पलट कर दिया है। दो साल के लिए वो सरपंच 18 में चुनी गई थी, फिर चुनी गई। 1500 लोग इस गांव में रहते हैं, 22 महिला सहायता समूह यहाँ उन्होंने खड़े कर दिए हैं, एक चौथाई से अधिक घरों में गांव के नल कनेक्शन से पाइप पहुंच गया है, पेड़ लगा दिए गए हैं, तालाबों को गहरा किया गया है, और एक महिला और जिसके पास सब साधन है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास पैसा केंद्र ने दिया हुआ है, तो उस गांव में सारी बुनियादी सुविधाएं और उस गांव का संपूर्ण विकास उन्होंने किया है। वैसे ही एक और छत्तीसगढ़ का गांव है जो पिछले वर्ष और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में 50 लाख रुपए मिले थे, वो बिल्कुल धुर जंगल में है और बस्तर से के आसपास लगा हुआ है, हरदी भाटा गांव। इस गांव में तो मतलब एकदम चमत्कार हो गया है, पहली बार लोगों ने अनुभव किया, आज गैस के लिए सिलेंडर है, उनके पास सड़कें हैं, उनके यहाँ पानी पहुंचा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास मिल गए हैं, शौचालय मिल गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलता है, और जो पंचायत के जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनको लगता है कि नहीं, हमारे गांव को पुरस्कार मिला है तो इसको हम और आगे ले जाएंगे।
यहाँ पर श्रोताओं, हम आपको आज के कार्यक्रम की थोड़ी और जानकारी देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को कवर किया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने, आइए जानते हैं धर्मेंद्र कुमार से वो क्या कह रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने पंचायतों के क्षमता वर्धन, उनके सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने से लोकतंत्र समृद्ध और सशक्त हुआ है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के बिहार के फैसले की सराहना की। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायतों में निवेश और उन्हें विकसित बनाने से विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, इसलिए उनकी सरकार ने पंचायतों को 10 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फंड दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पंचायतों को तकनीक के माध्यम से भी सशक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में जीविका दीदियों ने आर्थिक स्वावलंबन की मिसाल पेश की है।
यहाँ पर जगदीश जी, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, आपने एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया कि महिला जब कमान अपने हाथों में ले ले तो किस तरह वहाँ व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं किस रूप में भूमिका निभा रही हैं, आपने एक स्थान का उदाहरण दिया, हम इसे थोड़ा और समझना चाहेंगे कि किस रूप में महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिए जाने से एक बड़ा परिवर्तन आया है हाल के दिनों में।
जब आरक्षण हुआ और शुरू के वर्षों में यह होता था कि महिला सरपंच है तो उसका पति सरपंच होता था, भूमिका वो निभाता था। मोदी सरकार आपके आने के बाद ये बंद हो गया, महिलाएं गांव की खड़ी होगी, अगर ये सरपंच है तो यही निर्णय करेगी, यही जो बोलेगी हम वही मानेंगे। गांव गांव में लोग खड़े हो गए, महिलाएं एकजुट जब हो जाती है तो दुनिया को बदलना पड़ता है, और ये हमारे गाँव की महिलाओं ने दिखा दिया है। आज किसी भी गांव में कोई महिला सरपंच का पति उस पंचायत को नहीं चला सकता, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। पंचायत अगर सरपंच महिला है तो वही चलाती है, ये बड़ा बदलाव है। और इसको जब तक आप गांव में नहीं जाते, ऐसे गांव में जहां पर महिला सरपंच है, तब तक अनपढ़ महिलाएं भी सरपंच बनी है, और उन्होंने बस्तर छत्तीसगढ़ के और बिहार और झारखंड के इलाकों में चले जाइए, अनपढ़ महिलाएं सरपंच है लेकिन गांव में उन्होंने क्या बदलाव कर दिया, उनको मालूम है कि गांव में क्या जरूरत है, क्योंकि वो उन सब मुश्किलों से गुजर कर आई है, तो इसलिए वो सब मुश्किलें दूर करती है। ये बड़ा बदलाव है, मैं मानता हूँ कि मोदी सरकार ने, और ये बिहार को इसका श्रेय जाता है, नीतीश बाबू को इसका श्रेय जाता है कि पहली बार 2006 में उन्होंने महिलाओं के लिए पंचायतों में और 50% आरक्षण रखा, 50% मतलब आधी आबादी, तो आधी आबादी इसमें आ गई। प्रधानमंत्री ने इसीलिए उनका अभिनंदन भी किया और साथ में ये भी बताया कि 28 साल से 29 साल से जो महिला आरक्षण विधेयक संसद में लटका हुआ था उसको नारी वंदना अधिनियम के रूप में किस तरह इस सरकार ने पास किया है, अब लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की पहली बार देश में इतनी बड़ी भागीदारी है, और कोई भी लोकतंत्र, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि भागीदारी से, सामाजिक भागीदारी का उन्होंने नाम दिया इसको, इस सामाजिक भागीदारी में दूसरे पक्ष को अगर महिला को छोड़ देंगे तो सामाजिक भागीदारी पूरी नहीं होती। लोकतंत्र इसी सामाजिक भागीदारी से समृद्ध होता है, सशक्त होता है।
जगदीश जी, आपने श्रोताओं को बहुत ही उपयोगी और सार्थक जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत बनाने की दिशा में विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।